युधिष्ठिर महाराज ने अब ये अंतिम प्रश्न किया है यहां शांति पर्व में। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धर्मा पितामहे नोक्त्वा धर्मा पितामहे नोक्ता धर्म मोक्ष धर्माश्रिता शुभा धर्मम आश्रमिनाम श्रेष्ठम वक्तुम अर्हति मे भवान। हे पितामह, आपने हमको कल्याण की बहुत बातें बताई, खूब श्रवण किया, बड़ा आनंद मिला। अब आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों में सबसे उत्तम बात कौन सी, उसका उपदेश करो। पितामह बड़े खुश होकर कहने लगे कि युधिष्ठिर, सभी आश्रम अपनी अपनी जगह जब कल्याण करने वाले हैं, उनमें से किसी एक का चयन कैसे किया जाए। ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य आश्रम में कल्याण हो, गृहस्थ का गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ का वानप्रस्थ आश्रम में हो, अब इनमें से एक को कैसे चुने। तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा जटिल है, तो मैं तुम्हें इसको किसी और दृष्टांत से समझाता हूं। एक बार नारद जी ने इंद्र को कथा सुनाई थी। नारद जी महाराज तो तीनों लोक में खूब घूमते थे, तो घूमते घूमते एक बार देवराज इंद्र से मिले। इंद्र ने उनका बड़ा आदर किया। इंद्र ने पूछा कि महाराज, कोई आपने विचित्र घटना देखी है क्या, तो सुनाओ, क्योंकि आप तो हर घटना को बड़ी गहराई से देखने वाले हो, चर अचर प्राणियों के हर व्यवहार को अच्छी तरह से समझने वाले हो, कोई बात आपसे छिपी हुई हो ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको कोई अद्भुत बात लगी हो तो हमें भी बताओ। तो नारद जी महाराज इंद्र के पूछने पर कहने लगे, जो बात कही वो बात हे युधिष्ठिर मैं तुमको सुनाता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज वही तो सुनने के लिए बैठा हूं। भीष्म पिता मैंने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, वहां आसीत किल नरश्रेष्ठ महापद्मे पुरोत्तमे गंगाया दक्षिणे तीरे कश्चित विप्र समाहित है। गंगा के दक्षिण तट के ऊपर एक महापद्म नाम का कोई श्रेष्ठ नगर, वहां एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा जितेंद्रिय था, क्रोध को जीतने वाला था और सदाई संतुष्ट रहता था। उसके मन में कभी किसी वस्तु आदि के अभाव को लेकर चिंता होती नहीं थी, हरदम प्रसन्न, बड़ा स्वाध्यायी, तपस्वी और न्याय से जो मिले उससे अपना निर्वाह करे। उसके सगे संबंधी वगैरह कुल में बहुत थे और उसी के सद्गुणों के द्वारा सब लोग अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब उसने ये देखा कि अब मेरा वंश खूब अच्छा हो गया, बेटा हो गया, पोते हो गए, सब हो गए, तब उसने विचार किया कि भाई जिंदगी भर केवल अर्थ के लिए ही विचार करना कोई मनुष्यता नहीं है, मुझे तो मेरा कल्याण करना है। अब जीवन के थोड़े से दिन बाकी हैं, अब यदि कल्याण नहीं होगा तो कब होगा, बड़ा घबरा गया हूं। अब वो रात दिन उसके बेचैनी रहे, उसकी घरवाली पूछे, परिवार वाले पूछे कि क्या बात है, आजकल आप उदास खिन्न कैसे रहते हो। उसने किसी से अपनी बात नहीं बताई। एक दिन उसके घर में एक अतिथि ब्राह्मण आए, उस ब्राह्मण की बड़ी पूजा की और पूजा करके उस ब्राह्मण से अकेले में बैठकर बातचीत की कि हे निष्पाप ब्राह्मण, आप मेरे यहां अतिथि बने, मेरा हृदय आनंद से भर गया, आज आपसे कुछ दिल खोल करके बात करने की इच्छा होती है। ये मेरा बहुत लंबा चौड़ा गृहस्थ है और गृहस्थ धर्म का मैं पालन तो करता हूं, लेकिन मैं अपने कुटुंब के अंदर अपने को फंसा हुआ देख करके घबरा रहा हूं कि कहीं ऐसे पालन करते करते इधर ही वृत्ति रहते रहते प्राण निकल गए तो मेरा कल्याण कैसे होगा। कभी कभी इच्छा होती है अकेला ही रहूं और केवल आत्मचिंतन में ही रहूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा करने में मेरा परिवार सबसे बड़ा बाधा देगा, स्त्री है, पुत्र है, ये सब स्वार्थ के कारण से बंधे हुए रहते हैं, मैं जानता हूं। और इन लोगों के साथ में मैं जबरदस्ती करूं तो ये भी बात इसलिए ठीक नहीं बैठती है कि उससे मेरा अहंकार बढ़ सकता है, क्योंकि मैं इतना मजबूत नहीं हूं, क्या करूं। अब तक तो मेरी सारी उम्र परिवार वालों को राजी करने में ही बीत गई, अब मैं धर्ममय धन संग्रह करना चाहता हूं ताकि परलोक में वो काम आए। संसार रूपी सागर से पार होने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, उसके लिए मुझे धर्म की नौका चाहिए। संसार के लोगों का मैं व्यवहार देखता हूं तो मुझे कोई ज्ञान की बात मिल नहीं रही है। अच्छे अच्छे सात्विक पुरुष हैं, लेकिन उनके अंदर से विषयों का आकर्षण मिटता नहीं दिखता है। बोलते भी अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका ठीक है, लेकिन संसार की विषयों की इच्छा मिटती नहीं। और ये भी देखता हूं कि प्रत्येक घर के ऊपर यमराज जी के ध्वजा का जो ध्वजा है, ध्वजा पताका, वो फड़फड़ा रही है, अर्थात सब मरेंगे। और उन सब यमराज जी को देख करके नमे मनोरज्यति भोग काले, मेरे सामने विषय भोग की चीजें आती है तब भी मैं यमराज जी को याद करता हूं कि अरे ये भोग मेरे काम आएगा या यमराज जी का नरक मेरे काम आएगा, भोगेंगे तो यमराज जी का नरक काम आएगा, तो मन मेरा डरता है। नमे मनोरज्यति भोग काले। और जब सन्यासियों के यहां पर मैं देखता हूं, सन्यासी है, घर बार छोड़ दिया, परंतु वो भी भूख के, वो भूख लगती है तब घर घर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, मांग मांग के खाते हैं। मैं देखता हूं कौन सा मार्ग लूं। यदि मैं सन्यास मार्ग लेता हूं तो भोजन के लिए मुझे मांगना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है घर में ही रहूं और मांगू नहीं, स्वतः ही मुझे दे दें। लेकिन यहां मोह बढ़ने का पूरा अवसर है, इतने बरस तक मेरा मोह ही तो बड़ा है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अतिथि रुवाचे, अतिथि ने कहा कि देखो तुम और हम दोनों एक ही मार्ग के राही हैं। ऐसी की ऐसी बात मेरे मन में आती है, मैं भी अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए। मैंने बहुत से सत्संगों में अलग अलग बातें सुनी है। कोई तो कहते हैं कि मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, कोई कहते हैं कि यज्ञ का फल बहुत ऊंची चीज है, कोई कहते हैं कि वानप्रस्थ का आश्रय लो, कोई कहते हैं कि क्यों इधर उधर भटकते हो, गृहस्थ का ही काम ठीक ढंग से करो, तुम्हारा कल्याण तो गृहस्थ में ही हो जाएगा, और कोई कहते हैं कि राज धर्म होता है वही तो सबसे बड़ा धर्म होता है, कोई कहते हैं गुरु जी की सेवा करो, कोई कहते हैं कि वाक संयम आश्रयम, कोई कहते हैं अपने वाणी का संयम रखो, किसी से बोलो चालो मत, गूंगे होकर रहो, बड़ा लाभ मिलेगा, कोई कहते हैं अपने आत्मज्ञान में ही रहो, आत्मज्ञान में ऐसे रहो कि एक आत्म तत्व है वह दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई कहते हैं कि देखो भाई ये शरीर जिससे आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हो ये मिला तो आखिर माता पिता से है ना, तो माता पिता की सेवा करो, कोई कहते हैं कि सत्य का पालन करो, कोई कहते हैं अहिंसा का पालन करो, कोई कहते हैं कि भाई युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और कई कहते हैं तुम उच्च वृत्ति से पालन करो, खेत में पड़े हुए अन्न को लेकर आप खाओ, कोई कहते हैं कि भाई देखो शास्त्रों का चिंतन हरदम रहता है, हरदम रहना चाहिए, कोई कहते हैं कि अपने हृदय को बड़ा सरल और पवित्र बनाओ। बहुत बातें सुनते सुनते मैं किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सका हूं। एक बात है, मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी। क्या बताई महाराज? गुरु ने ये बताया कि देख बेटा, जब तुम्हारे बहुत बड़ी हलचल हो जाए ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन निर्णय पर जाऊं, तब तुम नैमिषारण्य के अंदर गोमती नदी के किनारे एक नागराज रहते हैं। वो नागराज हैं बड़े श्रेष्ठ, सब धर्म को जानने वाले हैं। यत्रेन्द्राति क्रमम चक्रे मान धाता राज सत्तम है, और गोमती नदी के किनारे मान धाता ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ को ऐसा विलक्षण ढंग से किया कि वहां वे इंद्र से भी आगे बढ़ गए मान धाता, इतना बड़ा यज्ञ किया। 100 यज्ञ करने पर होता है इंद्र, उन्होंने 133 यज्ञ किए, इंद्र से आगे बढ़ गए। उस पवित्र जगह पर एक सांप रहता है, उसका नाम पद्मनाभ है, लेकिन उसको पद्म भी बोलते हैं। पद्मनाभ तो इसलिए नहीं बोलते, भगवान का नाम हो गया, लेकिन पद्म बोलते हैं उसको। इतना सरल है, इतना शिष्ट है, मन से वाणी से बहुत ही श्रेष्ठ है, वो सब देवताओं को गंधर्वों को सबको प्रसन्न कर रखा है। विषमतापूर्ण वर्ताव करने वालों के लिए भी बड़ी शांति की बात पहले बोलता है, समझाता है, स्वयं कष्ट सह करके भी उनको सही मार्ग पर बताता है। वो बिल्कुल ही उद्दंडता करते हैं तब जाकर वो दंड देता है। तुम उसके पास जाओ और अपने प्रश्न को तुम उनके पास ले जाकर पूछो। प्रकृत्या नित्य सलिल है। देखो तुमने सर्प नाम सुनते ही कोई भय तो अंदर नहीं मान लिया, एकदम जल की तरह है। जल कितना निर्मल होता है, कोमल होता है, वो इंद्रिय संयमी है, और बड़े बड़े उसने यज्ञानुष्ठान किए हैं, उसके सद्गुणों के विषय में मैं पूरी बात कह नहीं सकता हूं, और तुम्हारे भी पूरी बात समझ में आ नहीं सकती है। तुम आश्चर्य कर रहे हो कि एक सर्प होकर के यज्ञ कैसे करता होगा। वो सर्प ऐसे नहीं है, सर्प तो है परंतु वो अपनी आकृति से मनुष्य का शरीर बनाकर यज्ञ कर सकता है, पड़ा रहता है तब सर्प के रूप में भी रह सकता है, उसके पास कई प्रकार की सिद्धियां है। शेषान्न भोक्ता वचनानुकूलो हितार्जवोत्कृष्ट कृता कृतज्ञ है अवैरकृत भूत हिते नियुक्तो गंगारिधाम्बो भिजनोपपन्न है। वो यज्ञ शेष भोजन करता है। यज्ञ शेष भोजन कौन सा होता है कि परिवार में सब लोग भोजन करें, उसके बाद जो बचे वो भोजन करें। अनुकूल दूसरे के हित की बात बोलता है, अनुकूल बात बोलता है। इस ब्राह्मण ने कहा कि वाह भाई, आपने तो मेरा भार उतार दिया, अब मैं उसी के पास जाऊंगा। तो जैसे राह चलते हुए किसी आदमी को कोई शैया मिल जाए, खड़े हुए को बैठने की जगह मिल जाए, भूखे को जैसे भोजन मिल जाए, प्यासे को जैसे जल मिल जाए, ऐसी मेरी आत्मा को आपने ठंडा कर दिया अतिथि देव, अब मैं उसके पास जाऊंगा। रात भर ये ब्राह्मण देवता ऐसी बातें करते रहे। वो ब्राह्मण अतिथि चला गया और इधर वो ब्राह्मण वहां से रवाना हो गया। रवाना हो करके और उत्तराखंड की तरफ गया। तो वहां चलते चलते एक बहुत बड़ा सरोवर आया। सरोवर के पास एक ऋषि रहते थे। उन ऋषि से पूछा कि महाराज, ये नैमिषारण्य के इस विशाल जंगल की तरफ कोई नागराज रहते हैं कि? हाँ रहते हैं। कहा और आगे जाओ, जंगल में रहते हैं। ऐसे करते करते जंगल, घोर जंगल में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। तब उसने एक स्थान देखा। स्थान देख करके कहने लगा, भो भो, हे हे, सुनो, यहां कोई है? मैं दरवाजे पर आया हूं, कोई मेरी बात सुनने वाला है? तब वहां पर उस नागराज की पत्नी आई। बड़ी पतिव्रता थी, हाथ जोड़े हुए आई। कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आपकी मैं क्या सेवा करूं? ओहो, आप कैसे यहां पधारे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि कितनी मधुर वाणी से तुमने हमारा सत्कार किया है, मेरी थकावट दूर कर दी है, मैं नागराज से मिलना चाहता हूं, मैं उसी काम के लिए आया हूं, मेरा जीवन का ये सबसे अंतिम मनोरथ है, एक बार मैं उस नागराज से मिलना चाहता हूं। बड़ी नम्रता से सिर नीचा करते हुए नम्रवाणी में कहा, हे ब्राह्मण देव, आर्य सूर्य रथम बोढ़ुम गतौसौ मासचारिक है, क्षमा कीजिएगा, अभी हमारे पतिदेव सूर्य का रथ ढोने के लिए एक महीने से गए हुए हैं और अब 15 दिन बाकी, एक महीने के लिए गए हुए हैं और 15 दिन बाकी है, 15 दिन के बाद मैं उनसे आपको मिला दूंगी। तब तक आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए और उनके दर्शन के अलावा कोई आपको विशेष काम हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, जब वो यहां आ जाए, मैं इसी जंगल में दूर में हूं, उनको तुम मेरे पास भेज देना, मैं अब दोबारा यहां नहीं आऊंगा, मेरे पास भेज देना, मुझे उनके दर्शन करने हैं, ज्यादा दूर नहीं हूं, गोमत्या पुलिने शुभे, मैं गोमती नदी के किनारे ही हूं, ज्यादा दूर नहीं हूं। अच्छी बात है। वो वहां पर रहने लगे। अब वहां रहने तो लगे लेकिन वो भूखे थे, तो सब नागराज का परिवार उनके सामने तरह तरह के भोजन लेकर गया कि देखो ब्राह्मण देवता, आप हमारे नागराज से मिलने के लिए आए, लेकिन वो यहां नहीं है तो हमारा कर्तव्य होता है, हम आपका अतिथि सत्कार करें, आप हमारा कुछ भोजन करें। ब्राह्मण ने कहा कि देखो अब हमको 6 दिन तो हो गए, थोड़े से दिन और बाकी हैं। उन लोगों ने कहा महाराज इससे क्या हुआ, आपको कुछ भोजन करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपके लिए आपके खाने योग्य फल है, दूध है, ऐसी ऐसी चीज लेकर के आए हैं। हमारे वंश में किसी ने भ्रूण हत्या नहीं की है, कोई गर्भपात नहीं कराया है कि इसका अन्न खाने योग्य न हो। नहीं नहीं नो भ्रूण कश्चित जात पद्यनृतो पिवा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई पैदा होते ही मर गया हो, ऐसा हमारे पे नहीं हुआ है। ऐसी स्त्री, ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई कि जिसका बच्चा पैदा हुआ और स्त्री मर गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। कोई हमारे यहां झूठ नहीं बोलता है, इसलिए हमारे अन्न में दोष नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि देखो कितनी अच्छी बात आप लोग बोलते हो, आपकी तो वो एक एक बात के अंदर शिक्षा भरी पड़ी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो पहले से व्रत कर लिया कि जब तक नागराज के दर्शन नहीं होंगे मैं भोजन नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रहे हैं, आप मेरी प्रतिज्ञा भंग मत करवाइए, ये भी तो आपका कर्तव्य बनता है। अच्छी बात है। सब लौट गए। इधर 1 महीने के बाद नागराज आए, इधर पत्नी ने उनका स्वागत किया, हाथ पैर धुलाए। और उस समय में पत्नी ने पत्नी से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे यहां कोई अतिथि आए, सबको भोजन वगैरह मिला, और मेरे वियोग में कहीं तुम लोग असुरक्षित तो नहीं थे, तुम्हारे पर कोई आफत तो नहीं आई। सबसे बड़ी आफत तो भाई एक ही होती है प्रिय, कि धर्म न टूट जाए, यही तो बात है। ऐसी आफत तो नहीं आई। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज इस संसार में पतिदेव सबके अलग अलग धर्म है। शिष्यों का धर्म है गुरु की सेवा करना, ब्राह्मणों का धर्म है वेद की आज्ञा का पालन करना, नौकरों का कर्तव्य है स्वामी का वचन मानना, राजा का कर्तव्य है लोगों के ऊपर लोगों का संरक्षण करना, क्षत्रियों का धर्म है सभी की रक्षा करना, वैश्य का धर्म है यज्ञ आदि पुण्य कर्मों को बढ़ाना और अतिथि सेवा करना, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करना शूद्र का काम है, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि सब प्राणियों का हित चाहे, एक दूसरे का मन से वाणी से परिवार में हित का चिंतन करे, ये गृहस्थ का काम है, और नियमित आहार करे। अहम कस्य कुतो वापि, हर आदमी को ये विचार करना चाहिए मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या काम करना है, मेरे जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है, ये बात हर सन्यासी को सोचना चाहिए और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। स्त्रियों का सबसे बड़ा परम धर्म है पतिव्रता से रहना। पतिव्रतात्वं भार्याया परमो धर्म उच्यते। ये बात मैं आपकी कृपा से अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मेरे अकुशल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना है। 15 दिन से आपके दर्शन के लिए एक ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, और उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने इतना ही कहा है कि नागराज के मैं दर्शन करना चाहता हूं, और साथ में ये भी कहा है कि जब आ जाए तो मेरे पास भेज देना, मैं वहां रह रहा हूं। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं, तो कठोर व्रत का पालन करने वाले भी ब्राह्मण आपके दर्शन के बिना भोजन भी नहीं करेंगे, गोमती नदी के किनारे हैं। और उन्होंने मेरे से प्रतिज्ञा भी करवाई कि बताओ प्रतिज्ञा करो कि वो आएंगे तो तुम उनको भेजोगी कि नहीं, तो मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली है, अब आप जाओ उनको दर्शन दो। नागराज ने कहा कि जब तुमने उनसे बात की तो उसकी आंख की बनावट कैसी थी, चेहरे पर शकल कैसी थी, उसके इशारे कैसे थे, कोई देवता तो नहीं है, कोई मनुष्य है कि कोई देवता है? क्यों महाराज इतनी गहराई से आप क्यों सोचते हैं कि मेरे दर्शन करने के लिए कोई आए ब्राह्मण? इतनी विनम्र जिसकी भावना, और ऊपर से यह कहे कि वो आए तो मेरे पास भेज देना, ये मेरा आदेश है, ये दो बातें कैसे हो सकती हैं प्रिय? इसलिए मुझे कुछ संदेह हो रहा है। संदर्शन रुचि और वाक्यम आज्ञापूर्वम, दर्शनों की तो इच्छा है और आज्ञापूर्वक वो दर्शन कहता है मेरे पास भेज देना उनको। सुर असुर गणानांच देवर्षिणांच भाविनी ननु नागा महाशौर्या सौरसेया स्वरस्विन। ऐसे तो नाग बहुत तेज होते हैं, हमको कोई सीधा आदेश दे नहीं सकता है, अपने नाग हैं वो देवताओं के लिए भी वंदनीय होते हैं और सेवकों को अपने लोग वरदान देते हैं, फिर मनुष्य तो हमसे वैसे ही दूर रहते हैं, ब्राह्मण बनकर के कौन आया होगा? नागपत्नी ने कहा महाराज इतनी गहराई से मत सोचिए, आप बहुत क्रोध करते हैं, बात में देखो इतनी देर में आप कहां के कहां चले गए, आपकी भुएं टेढ़ी हो गई। उन ब्राह्मण को मैंने देखा, इतनी सरलता उनकी आंखों से टपक रही थी, उनकी वाणी में अमृत टपक रहा था, वे देवता नहीं थे, बनावटी नहीं थे। मुझे तो लगता है उनके अंदर आपके प्रति बड़ी भक्ति रही है, जैसे बरसात के समय में पपीहा प्यासा रहता है, बरसात की बाट जोता रहता है, ऐसे ही वो आपके अलावा किसी को नहीं चाहता है। आप रोष का त्याग करो, इस रोष ने आपको देखो नाग योनि में भेज रखा है, इतने श्रेष्ठ हो आप, ब्राह्मण लोग आपका दर्शन करने आ रहे हैं, आपके शरण में आए हैं, और वो आदमी का आप दुख दर्द भी मालूम न करो, कितनी शर्म की बात होगी। यदि ऐसा करोगे तो आपको भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। मौने ज्ञान फलावा फलावाप्ति ही, मौन रहने से ज्ञान का फल मिलता है। दाने न च यशो महत, दान देने से यश बढ़ता है। और वाग्मित्वम सत्यवाक्येन, सत्य बात बोलने से वाणी के अंदर पवित्रता आती है, पटुता आती है। परत्र च महीयते, और परलोक के अंदर उसकी पूजा होती है। भूदान देने से उसकी उत्तम गति होती है, और न्याय पूर्वक अर्थ प्राप्त करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फल मिलता है। इसलिए महाराज आप ऐसा काम करो कि जो आपके अनुकूल हो। नागराज ने कहा कि देखो देवी, हम लोगों में अभिमान है, अभिमान होने के कारण से हमको सही बात का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन ये अभिमान ही न मानो में जाति दोषे न वही महान, अहंकार के कारण से अहंकार नहीं है, तो ये जाति ऐसी है, अपनी नाग जाति ऐसी, इनमें स्वाभाविक अहंकार रहता ही है, थोड़ी सी बात के अंदर क्रोध आ सकता है। अब हमारे अंदर क्रोध आ गया कि हमारे दर्शन के लिए आया और हमको आदेश देता है, लेकिन तुम्हारी अमृतमय वाणी ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई आदमी क्रोध करे तो उस क्रोध के बदले में क्रोध को भड़काना होगा, क्रोध के बदले में क्रोध करेंगे तो क्रोध भड़कता है, और क्रोध के बदले में शांत रहे और शांति की बात कहे तो अगले का क्रोध शांत हो जाता है। न च रोषाद अहम साध्वी पश्येयम अधिकम तमः, इस संसार में क्रोध से बढ़कर मुझे कोई नरक नहीं दिखता है। क्रोध के कारण से देखो, रावण ने राम जी से टक्कर ली और उसका क्या फायदा हुआ, पराजित हुआ। इंद्र को पराजित करने वाला रावण और राम के द्वारा मारा गया, बंदरों के द्वारा, भालुओं के द्वारा, देवताओं से नहीं मरा वो, देवताओं को तो कैद खाने में डालता था और भालू बंदरों से मारा गया। अंतपुर गतम वत्सम सुत्वा रामेण निर्धितम, परशुराम जी महाराज ने अंतपुर में रखे हुए कामधेनु के बछड़े का अपहरण जिस राजा ने किया था, उस राजा की कितनी सुरक्षा की थी, परशुराम जी महाराज जाकर उस राजा को मार करके ले आए उसको, और सहसा जी उनको मार डाला। तो ये सहस्राजन काम मामूली था, बड़ों बड़ों को इसने पराजित किया। इंद्र को पराजित करने वाला रावण और रावण को पराजित करने वाला सहस्राजन, लेकिन क्रोध किया, परशुराम जी से मारा गया। तुमने बहुत अच्छी बात कही है, ये क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जैसी गुणवती मुझे पत्नी मिली, यदि पति क्रोध करे और पत्नी यदि बुद्धिमत्ता से काम करे तो वो वहीं पर क्रोध शांत हो सकता है। यस्य मे त्वं विशालाक्षी भार्या गुण समन्विता, मैं तो यही चाहता हूं कि संसार में तुम्हारी जैसी पत्नियां मिले जो अपने घर को और अपने पति को बहुत सुंदर वातावरण में रख करके घर को बड़ा स्वर्ग बना सकती है। अब तुमने हमको कहा है तो हम अब उस ब्राह्मण के पास जाते हैं। अब वो ब्राह्मण के पास जाएंगे, क्या बात होगी उसका प्रसंग आगे बताएंगे।
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण